नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। लोकसभा और आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। आकाशवाणी समाचार ने चुनाव परिणामों की ताजा जानकारी के लिए विस्तृत व्यवस्था की। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को दिल्ली में जल संकट से निपटने के लिए संबंधित राज्यों के साथ ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की आपात बैठक बुलाने का निर्देश दिया। सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। सीरिया में इजरायली हवाई हमले में ईरान समर्थक 12 लड़ाके मारे गए और T20 विश्व कप क्रिकेट में श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। लोकसभा और आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के मतों की गिनती भी कल की जाएगी। एक रिपोर्ट।
सभी मतगणना केंद्रों पर सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होने के आधे घंटे बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना के रुझान और परिणाम चुनाव आयोग की वेबसाइट के साथ साथ वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। 543 सदस्य लोकसभा के लिए मतदान 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में किया गया था। हालांकि गुजरात की सूरत सीट बीजेपी ने निर्विरोध जीत ली थी। इस मतदान में 64 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया, जिनमें 31 करोड़ महिलाएं भी शामिल थीं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों से मतगणना से संबंधित फर्जी खबरों पर ध्यान न देने की अपील की है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि मतगणना सुरक्षित और पारदर्शी तरीके के साथ कराई जाएगी। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों पर मतगणना का दायित्व 22,595 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी संभालेंगे। प्रदेश में ईवीएम से गणना के लिए 3,883 टेबल तथा डाक मतपत्रों की मतगणना के लिए 242 टेबल लगाई गई हैं। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 18 और राज्य सुरक्षा बलों की 45 कंपनियां तैनात की गई हैं। साथ ही जिला पुलिस बल के 10,000 से अधिक जवान भी सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व संभालेंगे। चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त 116 प्रेक्षक पहले ही मतगणना स्थलों पर पहुंच गए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
राजस्थान में मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया है कि मतगणना के लिए 13,000 से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने राज्य में 56 मतगणना निरीक्षक नियुक्त किए हैं। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि मतगणना केंद्रों पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि मतगणना प्रक्रिया पर निगरानी के लिए 80 प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
बिहार में 33 जिला मुख्यालयों में मतों की गिनती के लिए कुल 40 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। एहतियात के तौर पर विजय परिणामों के बाद मतगणना स्थलों के आसपास विजय जुलूस निकालने और समर्थकों के साथ किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। मतगणना के बाद कल राज्य से कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
ओडिशा में लोकसभा की सभी 21 सीटें और विधानसभा की 147 सीटों की मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।
मतगणना 70 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना केंद्रों पर सशस्त्र पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जहां ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि ये प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो। उड़ीसा के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि कल 2,50,00,000 से अधिक मतों की गिनती की जाएगी। चूंकि राज्य में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव के लिए एक साथ मतगणना हो रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
जम्मू कश्मीर में मतगणना के लिए जम्मू और कठुआ में मतगणना केंद्रों और उसके आसपास त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चौकियों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिक्किम में 6 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सुचारू और शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मणिपुर में पर्यवेक्षक इम्फाल पहुंच चुके हैं और सभी तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। राज्य में मतगणना के लिए 24 केंद्र बनाए गए हैं। आकाशवाणी समाचार ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों के मतगणना की पल पल की जानकारी देने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। कल 15 घंटे का हिंदी और अंग्रेजी में विशेष कार्यक्रम लोक निर्णय 2024 सुबह 7 से रात 10 बजे तक प्रसारित होगा। इसमें देशभर से आकाशवाणी संवाददाता ताजा जानकारी देंगे। कार्यक्रम में रुझानों और परिणामों के बारे में विशेषज्ञों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चाएं होंगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी गोल्ड के साथ अन्य चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी की क्षेत्रीय समाचार इकाइयां भी विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेंगी। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने बताया कि मतगणना के परिणामों के बारे में जानकारी देने के लिए दिल्ली में आकाशवाणी मुख्यालय में सार्वजनिक घोषणा प्रणाली और बड़े डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं। दूरदर्शन ने भी मतगणना के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने बताया कि डीडी न्यूज सुबह 6 बजे से शहर में विजय चौक से विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा।
दूरदर्शन पर हमारे डीडी न्यूज, डीडी इंडिया और हमारे सभी प्रादेशिक चैनलों पर इसकी कवरेज कल सुबह से ही आरंभ हो जाएगी। डीडी न्यूज पर कल सुबह 6 बजे से विजय चौक से एक कार्यक्रम होगा जिसमें मतगणना के पूर्व के 2 घंटे के समय में एक ओवरव्यू दिया जाएगा और तत्पश्चात हम अपने स्टूडियो में शिफ्ट कर जाएंगे।
लोक निर्णय 2024 देश का पहला और सबसे विश्वसनीय प्रसारक आपके लिए ला रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी परिणामों पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम।
4 जून सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक मतगणना के पल पल की खबर।
जानिए कौन है आगे कौन पीछे,
हर सीट से सटीक जानकारी, कौन हारा और किसने बाजी मारी,
देश की करोड़ों जनता का क्या है निर्णय।
आकाशवाणी गोल्ड और अन्य आकाशवाणी चैनलों पर सुनिए लोक निर्णय 2024।
भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज पार्टी नेताओं के साथ बैठक में मतगणना के लिए पार्टी की तैयारियों पर चर्चा की। बैठक में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह, पार्टी महासचिव बीएल संतोष और विनोद तावड़े शामिल थे। पार्टी नेताओं ने कल की मतगणना की तैयारियों पर विचार विमर्श किया। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का उत्तर देने के लिए 1 सप्ताह का समय देने संबंधी अनुरोध खारिज कर दिया है। श्री रमेश को लिखे पत्र में आयोग ने उन्हें तथ्यात्मक आधार के साथ आज शाम 7 बजे तक जवाब देने का समय दिया था। श्री रमेश ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मतगणना को प्रभावित करने के लिए कल 150 जिला मजिस्ट्रेटों को फोन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह भीषण गर्मी और पानी की भारी मांग के बीच राजधानी में जल संकट से निपटने के लिए दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की आपात बैठक आयोजित करे। न्यायालय ने यह बैठक बुधवार को करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को निर्धारित करते हुए कहा कि बैठक की कार्रवाई और सभी संबंधित राज्यों द्वारा सुझाए गए उपायों की जानकारी भी पीठ के समक्ष रखी जाए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के निहामा गांव में सुरक्षा बलों के संयुक्त दल के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ आज सुबह शुरू हुई थी। मारे गए आतंकियों की पहचान और उनके किसी आतंकी संगठन से जुड़े होने की जानकारी सुनिश्चित की जा रही है। इससे पहले पुलिस और सेना के संयुक्त दल ने इस इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में विनियामक दिशा निर्देशों तथा अग्नि सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने पर फिर जोर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों, कर्मचारियों और आगंतुकों की सुरक्षा तथा कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है। हाल ही में कुछ जगहों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। भारत का कोयला उत्पादन पिछले महीने लगभग 8,40,00,000 टन तक पहुंच गया है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10% से अधिक है। पिछले वर्ष ये 7,60,00,000 टन से अधिक था। स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय का संस्थागत ढांचा बनाने के लिए आज नई दिल्ली में नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के संजय मूर्ति ने कहा कि राष्ट्रीय ई पुस्तकालय पाठकों को सर्वसुलभ रहेगा। आने वाले 2-3 वर्षों में 100 से ज्यादा भाषाओं में 10,000 से ज्यादा किताबें उपलब्ध होंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक आज 76,583 अंक के स्तर पर खुला था और दिन के कारोबार में ये 76,738 अंक के उच्च स्तर तक गया। सेंसेक्स आज 2,507 अंक की बढ़त लेकर 76,468 अंक पर पहुंचकर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी आज 23,337 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर खुला था और दिन के कारोबार में ये 23,339 अंक तक गया। निफ्टी 733 अंक ऊपर चढ़कर 23,264 पर पहुंच गया।
सीरिया के अलप्पो में आज तड़के इसराइली हवाई हमले में ईरान समर्थक 12 लड़ाके मारे गए। इन लड़ाकों में सीरियाई और गैर सीरियाई नागरिक शामिल थे। इस हमले में अलप्पो के ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों को निशाना बनाया गया। इसराइल सीरिया में लेबनान के हिजबुल्ला गुट और ईरानी लड़ाकों के ठिकानों पर पिछले महीने से हमले कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख साइमन स्टिल ने आगाह किया है कि पृथ्वी के जलवायु तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना बेहद कठिन है। जर्मनी में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में श्री स्टिल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा बुलाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना बढ़ते तापमान से बचना दूभर हो जाएगा और मानवता पर खतरा बढ़ जाएगा। T20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूयॉर्क में श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला चल रहा है। श्रीलंका टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 11 ओवर में 5 विकेट पर 44 रन बना लिए हैं। आज दिन में एक रोमांचक मुकाबले में नामीबिया ने सुपर ओवर में ओमान को हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरूआत की। आकाशवाणी T20 क्रिकेट विश्वकप का आंखों देखा हाल प्रसारित करेगा। भारत के सभी लीग मैच सेमीफाइनल और फाइनल का प्रसारण किया जाएगा। कमेंट्री के अलावा मैच के शुरू होने से पहले पारी के ब्रेक के दौरान और मैच के बाद विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण भी किया जाएगा। मैच का प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी होगा। सूचना तथा प्रसारण सचिव संजय जाजू और प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने विश्व कप के लिए प्रोमो जारी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा और आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। आकाशवाणी समाचार ने चुनाव परिणामों की ताजा जानकारी के लिए विस्तृत व्यवस्था की। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को दिल्ली में जल संकट से निपटने के लिए संबंधित राज्यों के साथ ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की आपात बैठक बुलाने का निर्देश दिया। सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। सीरिया में इजरायली हवाई हमले में ईरान समर्थक 12 लड़ाके मारे गए और T20 विश्व कप क्रिकेट में श्रीलंका तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।